मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2018 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान मित्रों के नाम हैं मनोज कुमार मौर्य, आपका गांव है करमेल, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से। नीलम कुशवाहा, आप हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। दीपांशी गुप्ता, आप हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सुनील कुमार, आप हैं पानीपत हरियाणा से। और आशीष व्यास, आप हैं रायसेन मध्य प्रदेश से। तो मनोज, नीलम, दीपांशी, सुनील और आशीष, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे लोकतांत्रिक चेतना के बारे में कुछ बातें करूंगा। और ये जो लोकतांत्रिक चेतना की बात होगी, बेसिकली अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उन संदर्भों में होगी। लेकिन आइए इससे पहले हम लोग कुछ दूसरी जो खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक न्यूज में आपने सुना होगा, एक समुद्री तूफान आया है जो खासकर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तूफान का नाम है फेथाई, जिसके इंग्लिश में स्पेलिंग होगी PP फॉर पटना, H फॉर हरियाणा, E फॉर इंग्लैंड, फे THAI फेथाई। देखिए, इसके जो आखिरी के 3 शब्द हैं THAI, 4 शब्द, थाई के आगे लगा हुआ फेथाई, इसका मतलब यह हुआ कि, मतलब तो नहीं लगाना चाहिए कि ये जो नाम दिया है इस तूफान का वो थाईलैंड ने दिया है। और इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, नाम रखने के लिए बकायदे एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक इससे पहले आपको ध्यान होगा कि आंध्र प्रदेश के इसी क्षेत्र में 2 और साइक्लोन आ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि सन 2018 में ये तीसरा साइक्लोन है जिससे हमारा जो आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है ये बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसमें एक था तितली और दूसरा गज, तितली, गज, और अब ये तीसरा तूफान है फेथाई। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, अभी ये खबर पूरी होनी है लेकिन सूचना के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालदीव के जो अभी नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह, वो भारत की यात्रा पर आ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण उनकी यात्रा है। और आपको ध्यान होगा कि जब मालदीव में अभी चुनाव हुए थे, अभी लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, तो उस चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति चुने गए हैं सालेह साहब, ये भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान भारत और अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद भी मांगी थी। उस तरह की मदद नहीं, एक तरह से समर्थन, और भारत ने बाकायदे समर्थन दिया था क्योंकि इससे पहले जो मालदीव के राष्ट्रपति थे उनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा था, भारत से वो थोड़ा सा छिटक रहे थे। लेकिन सालेह जो है, मोहम्मद सालेह, ये भारत के समर्थक हैं। और आज शायद आपको यह भी ध्यान होगा, दरअसल इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है कि जब मोहम्मद सालेह साहब शपथ ले रहे थे तो उस समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बकायदे गए थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का वहां जाना, मतलब भारत की दृष्टि से मालदीव की प्राथमिकता को दिखाता है और साथ ही मित्रता के जो संबंध है, यानी कि जो घनिष्ठ संबंध है, उनको भी शो करता है। ये जाना इसी तरह से सामान्य किस्म का जाना नहीं है कि आपने बुलाया और हम चले आए, ऐसा नहीं होता है, खासकर कूटनीति के क्षेत्र में। अब वो भारत आ रहे हैं और अब देखते हैं कि उनकी यात्रा के दौरान किस तरह के समझौते होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, फिर हम लोग इस इश्यू पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय को शुरू करने से पहले मैं आज की जो एक दो क्लिपिंग्स हैं थोड़ी सी उनके बारे में बताना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा, इससे पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि पोलैंड का एक शहर है कैटोविस, और उस कैटोविस में लगातार बैठकें हुई है, और खासकर जो पेरिस में जलवायु समझौता हुआ था, जो पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जाना जाता था, जो 2015 में हुआ था, उसको कैसे लागू किया जाए इस पर बातचीत हो रही थी, है ना। उस बातचीत के क्या रिजल्ट्स आए हैं उस पर आधारित यह एडिटोरियल कमेंट है। इससे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप पढ़ करके नोट कर लीजिएगा। सामान्यतः आप इस सम्मेलन को एक प्रकार से असफल सम्मेलन कह सकते हैं मेरी दृष्टि में, लेकिन क्यों असफल है तो बट नेचुरल है कि आपको बताना पड़ेगा, और कितना सफल है वो भी आपको बताना चाहिए, तभी समीक्षा हो पाती है। तो उस वो पॉइंट आपको कुछ इसमें मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक और भी एडिटोरियल आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का ही, और यह है सहकारी संघवाद के ऊपर, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और जो संघवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और मेंस में आप देखेंगे कि अक्सर इस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें तीन घटनाओं की चर्चा की गई है जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कि इन घटनाओं के माध्यम से ये लग रहा है कि जो सहकारी संघवाद है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जबकि वर्तमान सरकार शुरू से ही सहकारी संघवाद पर जोर दे रही थी। घटनाएं मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में आंसर लिखते हैं तो आपको तथ्य के रूप में इस तरह की घटनाएं देनी चाहिए, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि नहीं, आप सही मायने में समझ रखते हैं। पहली घटना उन्होंने दी है, खासकर जब आपको ध्यान होगा कि केरल में जब बाढ़ की स्थिति आई थी और बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, तब उस समय संयुक्त अरब अमीरात ने सहायता देने की बात कही थी कि हम आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, लेकिन राज्य उस तरीके से सहायता नहीं ले सकते, यह विषय केंद्र का है, तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम सहायता नहीं लेंगे। तो ये एक बिंदु था कि राज्य चाह रही है लेकिन केंद्र नहीं चाह रही है। दूसरा, फिर कुछ ही दिनों पहले की घटनाएं आप देख रहे हैं कि सीबीआई में आंतरिक कलह मची हुई है, और फिर दो राज्यों ने सीधे सीधे यह आदेश जारी कर दिया कि हम अपने यहां सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे, जिसमें एक है आपको मालूम है आंध्र प्रदेश और दूसरा है पश्चिम बंगाल। अब आप देखिए कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप अपने राज्य में जांच करने का अधिकार नहीं देंगे, यह भी कहीं न कहीं संघवाद पर थोड़ा सा चोट करता है। इसके बाद एक और घटना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से पेंशन योजना शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले ही, तो दो चार दिन पहले ही मैंने बताया था कि किस तरीके से जो पेंशन योजना है केंद्र सरकार ने बंद कर दी है और एक नया सिस्टम उसमें शुरू कर दिया है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हम कहते हैं, जिसमें जो नौकरी करने वाला है वो कुछ अंशदान करता है, सरकार भी कुछ अंशदान करती है, लेकिन इन्होंने जो दिल्ली की सरकार है उसे न करके अब वो अपनी पेंशन योजना शुरू कर रही है जो पहले से चली आ रही थी। तो यहां भी आपको अब केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव दिखाई दे रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि जैसे केंद्र और राज्यों में जो संघ प्रणाली है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। तो ये तीन घटनाएं हैं, अच्छी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप इन तीनों घटनाओं को नोट कर लें। मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इंग्लिश में है। मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी में भी इसका आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। दो और क्लिपिंग्स हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, अगर आप उन्हें समय निकाल कर पढ़ सकेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे लाभ मिलेगा। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और वो है लोकतांत्रिक चेतना, डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस। अभी के चुनाव को हम ध्यान में रख करके करेंगे। देखिए, लोकतंत्र बेसिकली क्या है? लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र का मतलब है कि सत्ता पर जो भी व्यक्ति है या जो भी पार्टी है वो लगातार शासन नहीं कर रही, यही उसका अर्थ है। क्योंकि अगर कोई चाहे व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो, लगातार अगर वो शासन कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने मन से कुछ भी नियम कानून बनाती चली जाएगी, और वो मान करके चलेगी कि जनता उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर रही, जनता को कोई असंतोष नहीं है, तभी तो जनता उसे बार बार चुन रही है और चुन करके आ रही है। तो लोकतांत्रिक चेतना वहां होती है जहां आप बदल बदल कर लोगों को शासन करने का मौका देते हैं, क्योंकि कोई भी शासक पूरी तरह से आदर्श पूर्ण शासक हो ही नहीं सकता कि वो जनता की सारी मांगों को स्वीकार करे। देखिए, ब्रिटेन सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, फिर अमेरिका को आप रख सकते हैं, वो लोकतांत्रिक देश है और दोनों बहुत बड़े और बहुत ही ठोस और बड़े पुराने लोकतांत्रिक देश है, हम तो 70 साल ही पुराने हैं। अब आप देखें कि ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, लेकिन उनमें बदलाव होती रहती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही है कि एक पार्टी 2 टर्म यानी कि 10 साल तक शासन में रहती है, फिर बदल दिया जाता है, जबकि वहां की पार्टी की नीतियों में कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं होते हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, उसी तरह से आपको रिपब्लिकन मिलेंगे, डेमोक्रेट्स मिलेंगे, डेमोक्रेट्स मिलेंगे, रिपब्लिकन मिलेंगे, सामान्यतः वहां भी 2 टर्म से ज्यादा एक पार्टी को मौका नहीं मिलता है। वही पैटर्न आपको अब इंडियन पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। अभी राज्यों के ही चुनाव हुए हैं, तो ठीक है मिजोरम में चांस डबल दे दिया गया है और तेलंगाना में भी डबल है, लेकिन बाकी तीनों राज्यों में आप देखें कि मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी पार्टी का शासन समाप्त हुआ, छत्तीसगढ़ में पुरानी पार्टी का शासन समाप्त हुआ, और राजस्थान में तो यही लगभग हो गया कि अल्टरनेटिव अभी ये पार्टी कांग्रेस पार्टी फिर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी फिर बीजेपी। पहली बात ये। दूसरी बात, लोकतांत्रिक चेतना सही मायने में वहां काम करती है जब हम अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को देखते हैं, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के, क्योंकि अगर हम संकीर्णताओं में फंसे रहते हैं तो वह एक प्रकार का कह लीजिए कि उग्र राष्ट्रवाद किस्म की चीज हो जाती है। जैसे इस बार के चुनाव में आप देखिए, अभी आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते होंगे और उससे रिलेटेड आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रेस क्लिपिंग्स में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, शेखर गुप्ता जी का लिखा हुआ, जो बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, आपको इसे पढ़ना भी चाहिए। कि चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के नारे दे रही थी, तो उसमें राम मंदिर की बात थी, यानी कि जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की बात ज्यादा कही जा रही थी, जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है उसके खिलाफ ज्यादा बातें की जा रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी, राइट? कहा यह जा रहा है कि अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उन चुनाव परिणामों ने इस तरह की बातों को नकार दिया है कि जाति के आधार पर धर्म के आधार पर वोट दिए जाएं। तो फिर किसे स्वीकार किया है? कहा जा रहा है कि अब जो हमारी चेतना है या हमारे जो लोग हैं बेसिकली इस तरह के मामलों से ऊपर उठ गए हैं कि कैंडिडेट की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, या हम हिंदू हैं या वो मुसलमान हैं या फलाना है, या मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, शहरों के नाम बदले जाने चाहिए, इस मानसिकता से वो ऊपर उठ गए हैं। किसी समय ये चीज बहुत काम करती थी, अब तो ज्यादातर जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो नौजवान है वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, राइट? जो किसान है वो कह रहे हैं कि हमें आय का साधन चाहिए, हमें ठोस आधार चाहिए, राइट? जो देश के उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हमें आर्थिक विकास चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ठोस मुद्दों की मांग होने लगी है, जिसे आप कह लीजिए विकास परक राजनीति। और आपको ध्यान होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब चुनाव अभियान में निकले थे तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की ही बात करते थे। सबका साथ का मतलब है देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका विकास भी होगा, सबका समान रूप से विकास होगा। तो वो जो नारा था आप देखिए, वो एक व्यापक नारा था, एक लोकतांत्रिक नारा था, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है सबका भला होना, बहुमत का भला होना नहीं है, सबका भला होना। तो उसमें था सबका साथ और सबका विकास। तो सही मायने में वो जो नारा था वो लोकतांत्रिक नारा था और उसका जबरदस्त प्रभाव भारतीय मतदाताओं पर पड़ा और इतने बड़े बहुमत के साथ वो पार्टी सत्ता में आ गई। तो इस तरीके से अब जो विश्लेषण आ रहे हैं उनमें ये बात कही जा रही है कि भारतीय जो मतदाता है वो जागरूक हो गया है, वो मेच्योर हो गया है, वो प्रौढ़ बन गया है और अब उसे नारेबाजी के भ्रम में भ्रमित नहीं किया जा सकता, उसके माध्यम से आकर्षित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रही है और ये भारत के भविष्य की एक अच्छे दिशा की ओर जाने की निशानी है। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं, आप सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले मैं रोहित सिंह जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, सौरभ यादव जो कानपुर से हैं और अनुपमा जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, इन तीनों मित्रों को आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यूपी पीएससी के रिव्यू ऑफिसर्स एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की है और भविष्य के बेहतर सफलता के लिए उन सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अर्जुन पाटीदार उज्जैन मध्य प्रदेश से, विकास कुमार इक्तादार अहमद उत्तर प्रदेश से, रचना बिंदल आगरा उत्तर प्रदेश से, निशा निमोरिया और चंदन मंडल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।